पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुख में हो संसार।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति वन के इस डायमंड हॉल में प्रभु प्रिय भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज विशेष रूप से हमारे बीच में आदरणीय अदिति बहन उपस्थित है। आपका हम अंतर मन से अभिवादन करते हैं, अभिवादन करते हैं। आप मेमोरी और माइंड पावर के अंदर एक्सपर्ट है, साथ में माइंड मैनेजमेंट के फील्ड में आपने जो पारदर्शिता प्राप्त की है उसकी बदौलत आपको अनेक अवार्डों से सम्मानित किया गया है। लिम्का बुक के अंदर आपने 3 बारी अपना नाम दर्ज कराया है और गिनीस वर्ल्ड बुक के अंदर भी आपने अपना नाम दर्ज करवाया है। ऐसी विशेष प्रतिभा संपन्न बहन जी हमारे बीच में उपस्थित है। ब्रह्मा कुमारीज की स्पार्स विंग के अंदर आप एक्टिव मेंबर हो। इस वीक के अंदर विशेष रूप से स्पिरिचुअल और साइंस का समन्वय करके मनुष्य जीवन में दिव्य गुण किस तरह उजागर कर सकते हैं उसका संशोधन भी होता है। आप एक अच्छी ट्रेनर के रूप में अनेक भाई बहनों को माइंड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हो, तो मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगी कि बहन जी का बुके और गुलदस्ते से स्वागत करें। हम सभी भी इस स्वागत की श्रृंखला में करतल ध्वनि से अपना सहयोग देंगे। अदिति बहन की विशेषता हमने देखी कि एकदम निर्माणता और निरअहंकारी बहन है। उन्होंने बोला कि मेरा परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब ये विशेषता ही प्रभु प्रसाद बनती है तो किस तरह मानव जीवन में संबंधों की एक गरिमा बनती है। और आज विशेष रूप से संबंधों में स्नेह कैसे बना रहे उस विषय पर आप हमें बताएंगे आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बहुत सुंदर टॉपिक है हमारे रिश्तों के ऊपर, रिलेशनशिप्स, जिसके बिना हमारा जीवन जीवन नहीं है। आज इंसान कितनी भी प्राप्तियां कर ले, लेकिन अगर उसके रिश्ते मधुर नहीं हैं, रिलेशनशिप्स में क्लोजनेस नहीं है, मिठास नहीं है, तो सारी प्राप्तियां बेकार हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं महसूस करते हैं कि आज हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स में भी फिजिकली हम पास हैं लेकिन मन से थोड़ी दूरियां पहले से ज़्यादा होती जा रही हैं, राइट? और इसीलिए शायद आज इस टॉपिक की ज़रूरत है। तो शुरुआत थोड़ी हंसी से ही कर लेते हैं, हंसना ही जीवन है। रिश्तों को हर कोई अपने रूप से डिफाइन करता है। एक डॉक्टर से पूछा, दोस्ती का रिश्ता कहते हैं जब कोई भी काम ना आए दोस्त हमेशा साथ काम आता है। तो उन डॉक्टर साहब का कहना था कि तीन प्रकार के दोस्त होते हैं। एक होते हैं आयुर्वेदिक दोस्त। अब वो दोस्त वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं बातचीत करने में सब तरह से, लेकिन इमरजेंसी में काम नहीं आते हैं। एक होते हैं एलोपैथिक दोस्त। वो इमरजेंसी में तो अच्छे से काम आते हैं लेकिन पता नहीं कब साइड इफेक्ट दे जाएं। और एक होते हैं होम्योपैथिक दोस्त। वो बड़े मीठे होते हैं, अच्छे लगते हैं, और खास बात ये है कि फायदा कुछ करे या ना करे लेकिन नुकसान नहीं करते हैं। तो आपके पास कितने तरह के दोस्त हैं? सारे हैं? अच्छा, अच्छी बात है। तो आज गणेश चतुर्थी भी है, आप सभी को गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस उपलक्ष्य में मैं कहूंगी, आज मैं बड़ी सुंदर बात पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इग्नोरेंस। समस्या कुछ है नहीं लेकिन हमारी अज्ञानता किसी सिचुएशन को समस्या बना देती है। ऐसे ही सॉल्यूशन इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन विजडम, है ना? तो इसलिए आज गणेश चतुर्थी पे जिनको लॉर्ड ऑफ विजडम कहा जाता है, बुद्धिदाता कहा जाता है, हम कुछ स्पिरिचुअल लॉज को भी समझेंगे, कुछ स्पिरिचुअल विजडम को भी अपने जीवन में समझेंगे जिससे हमारे ये रिश्ते और मधुर हो सकें। तो एक एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं, ठीक है? अभी आपने एक एक्टिविटी करी, उसमें आपने शरीर को थोड़ा उछाला घुमाया। अभी क्या करेंगे, ये दिमाग की एक्टिविटी है, ऑब्जर्वेशन। तो आपके सामने एक चित्र है, आपको ये बताना है कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है। आप माइक लेकर भी बता सकते हैं, नहीं तो वहां से बोलेंगे तो हम सुनने की कोशिश करेंगे। आपको चित्र में क्या दिख रहा है? हाँ जी, ईगल दिख रही है। ओके, ईगल दिख रही है, एक यंग वन दिख रहा है उसके बीक में।
यंग वन, यस, बीक में यंग वन ऑफ द
यंग वन इन बीक। और क्या दिख रहा है? बर्ड दिख रही है। ओके, ईगल कहें, बर्ड कहें,
और पीछे में, नीचे में
थोड़ा इधर भी माइक दीजिए, माइक लेके आप हाथ खड़ा कीजिए, आपको माइक देंगे।
एलिफेंट का सर दिख रहा है।
क्या दिख रहा है?
एलिफेंट का सर।
एलिफेंट का सर, ओके। और जल्दी से दूसरे हाथ उठाएं जिससे माइक आपके पास पहुंचे। जी,
नदी है, नदी के ऊपर पक्षी है।
हाँ, रिवर है, बर्ड्स हैं,
ग्रुप ऑफ बर्ड्स।
हाँ जी,
ग्रुप ऑफ बर्ड्स और रिवर।
हाँ, ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज देयर। और यस, आप तक माइक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर पास ऑन करें आगे उनकी बात को।
स्मॉल ग्रास इज देयर एट
सी। स्मॉल,
स्मॉल ग्रास, ग्रास, ग्रास,
ग्रास। ओके, ग्रास इज देयर। फिश इज देयर। ओके, फिश दिख रही है आपको इसमें?
सर के पीछे गणेश जी का सूंड दिख रहा है।
कहाँ से बोल रहे हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे? हाँ जी,
सर के पीछे गणेश जी का सूंड दिख रहा है.
अच्छा, गणेश जी भी दिखाई दे रहे हैं आपको सिर के पीछे. ओके.
वो अपने यंग वंस को सेव कर रहा है.
यंग वन को सेव कर रहा है. ओके, सेविंग द यंग वन. और कुछ? बोलिए. ठीक है, हो गया, हो गया. यस, हाँ जी.
ईगल के फेदर्स स्प्रेड हुए हुए हैं.
ईगल है.
वेट फेदर्स.
हाँ, ठीक है. ओके, चलिए. अभी आंख बंद करके सोचिए, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है. क्या क्या था? ईगल थी, बर्ड्स थे, रिवर थी, ग्रास थी, और बच्चा था, उसको बचा रहे थे, गणेश जी थे. हाँ, बहुत सारी चीजें हमने देखी. ठीक है. अच्छा, अब मैं एक और पिक्चर दिखाऊंगी, आप बताएंगे कि आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन. जी, हाथ खड़ा करिए, फिर माइक आपके पास पहुंचाएंगे. हाँ जी.
सेम पिक्चर बट इन्वर्टेड.
आपको दिखाई क्या दे रहा है?
एक उल्टी बर्ड जिनके जिनके मुंह में एक यंग वन है.
सॉरी, सुनाई नहीं दे रही आपके पास.
एक उल्टी बर्ड, खड़ी खड़ी बर्ड है.
माइक दीजिए इनको आगे. प्लीज माइक पे बोलिए, ऐसे यहाँ सुनाई नहीं देगा ना इतने बड़े हॉल में.
बर्ड्स है, रिवर, स्काई दिख रहा है. रिवर
स्काई
दिख रहा है. हो गया. तो नाउ टू मोर ट्रीज, वो जो पहले नहीं दिख रहे थे.
टू ट्रीज दिख रहे हैं.
यस.
और माइक लेकर बोलिए.
बोट दिखाई दे रही है, उसके अंदर एक बेबी दिखाई दे
रहा है. ओके, बोट दिख रहा है उसमें.
हाँ.
एक पर्सन है.
जी जी जी. हाँ.
ठीक है.
और एक टर्टल टाइप का भी दिख रहा है.
एक टर्टल टाइप का भी दिख रहा है. और क्या दिख रहा है? भाइयों को कुछ दिख रहा है? हाँ, फिश दिख रही है. अच्छा,
और मैन इज सिटिंग इन द बोट.
बोल रहा है? हाँ जी,
मैन मैन
मैन दिख रहा है.
नाव भी दिख रही है.
हाँ, नाव, बोट आ गई.
समथिंग इज देयर ऑन द बीक.
समथिंग इज देयर ऑन
बीक.
ओके. हाँ, तो ये पर्सन है ना. पर्सन,
वो ईगल का जो चोंच था वो बोट जैसा दिखाई दे रहा है, और हाँ, उसके नीचे मछली भी दिखाई दे रहा है.
मछली दिख रही है. ठीक है. अच्छा, अब देखिए, आप सबसे हमने दोनों पिक्चर्स की इनपुट ली. अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये पिक्चर और ये पिक्चर, बोथ दीज पिक्चर्स, ये पिक्चर क्या है? सेम पिक्चर है, लेकिन इसको 180 डिग्री फ्लिप कर दिया है. करेक्ट? ध्यान कर रहे हैं आप? वही पिक्चर है, 180 डिग्री फ्लिप है. तो जैसे ही आपने उसको 180 डिग्री फ्लिप किया, तो आपने उसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं, और दूसरे तरीके से देखने से क्या हो रहा है? आपको दिखाई भी अब कुछ और दे रहा है ना. जो पहले बीक दिख रही थी वो बोट दिखने लगी. करेक्ट, है ना. और जो पांव दिख रहे थे बर्ड के, वो ट्रीज बन गए. तो कहने का भाव ये है, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज. बहुत गहरी बात है. When you change the way you look at things, जब आप देखने का तरीका बदलते हैं, तो जो देख रहे हैं वो ही बदला हुआ नजर आता है, है ना. हाँ जी. तो कहने का भाव ये है कि सिचुएशंस वही रहेंगी, लोग वही रहेंगे, रिश्ते वही रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने रिश्तों को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, उसमें मधुरता लाना चाहते हैं, तो हमें उनको देखने का दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा, सही दृष्टिकोण लाना पड़ेगा। एक्चुअल में आज हमारी जो प्रोग्रामिंग हो रही है सबकॉन्शियस की, जिस दृष्टिकोण से हम रिश्तों को देखते हैं, तो कैसे दृष्टिकोण से देखते हैं, हमारा इनपुट क्या जा रहा है, आज रिश्तों में धोखा मिलता है ना, आज लड़कियां शादी करने से पहले क्या कहती हैं, हमें सास ससुर के साथ नहीं रहना, क्यों, क्योंकि उस रिश्ते को कैसा देखा जाता है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमें आजादी से जीने नहीं देंगे। आज बच्चे 12th पास करते ही घर से दूर जाना चाहते हैं, पढ़ने की इच्छा से नहीं लेकिन आजादी की इच्छा से बंदिश महसूस करते हैं, राइट, क्यों, क्योंकि जो इनपुट्स जा रहे हैं वो हमारी रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसलिए ऑलवेज अलाउ पॉजिटिव इनपुट्स। मुझे याद है हमारे कोई नोन थे, उनकी तीसरी बेटी की शादी करनी थी, तो मैंने उनसे, उन्होंने कहा कोई लड़का हो तो बताना, तो मैंने कहा अच्छा इसको लड़का कैसा चाहिए, तो कहते हैं कि लड़के की तो चॉइस अलग बात है लेकिन इसको तो सास ससुर ऐसे चाहिए जो फोटो में लगे हो, हार टंगा हुआ, और बड़े मजे से बता रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, मैंने पहली बार ये बात सुनी, मैंने कहा ऐसा क्यों, कहती है इसकी बड़ी दो बहनें हैं ना, वो सारे दिन आके अपनी ससुराल की कहानियां सुनाती हैं, और वो सुन सुन के कहती है मैं तो उस घर में शादी करूंगी जहां पर सास ससुर ना हो। शादी से पहले ही हमारी ये सोच है तो शादी के बाद रिश्ते कैसे होंगे, और ये सोच बनी कैसे, क्योंकि हर समय इनपुट क्या जा रहा है, गलती ऐसा कभी नहीं होता एक ही तरफ से होती है, दोनों तरफ से होती है, लेकिन आप जब एक की ही सुनेंगे तो आपको उसके दृष्टिकोण से ही बात पक्की लगेगी कि वो ही खराब है। आप कभी भी किसी सास से बात करके देखिए, सास की जो सहेली होगी उसको बहू खराब लगेगी, और बहू की जो सहेली होगी उसको सास खराब लगेगी, और ये एक रिश्ते की बात नहीं है, सभी रिश्तों के अंदर ऐसी ही बात है ना। लेकिन यहां पर थोड़ी सी समझदारी की जरूरत होती है, ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज सारा दिन हम देख क्या रहे हैं, टेलीविजन पर क्या देख रहे हैं, यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं, जो भी हम सीरियल्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, उन सब के अंदर संबंधों को किस रूप से दिखाया जा रहा है, कोई किसी के साथ भी रिश्ता रख सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सारा दिन देख क्या रहे हैं सीरियल्स में, उसकी दूसरी शादी है, उसका तीसरा अफेयर और इसका दूसरा तलाक हो रहा है, रिश्तों को टूटते, रिश्तों के अंदर ट्रस्ट खत्म होते हुए सारा दिन हम देख रहे हैं, एक इसके लिए सास उसके लिए षड्यंत्र रच रही है, ननद उसके लिए रच रही है, बेचारी बहू पिसे जा रही है। तो जब हम इस तरीके के इनपुट सारा दिन लेते हैं, लेते तो हम एंटरटेनमेंट के लिए हैं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं हमारी जो इनपुट जा रहा है वो हमारे अंदर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर रहा है, हमारे मन से हमारी विचारों को निर्माण करने की डायरेक्शन मिल रही है, और जैसा हम फिर सोचते हैं उसी तरीके की हमारी कर्म बनते चले जाते हैं, वैसे ही हमारे रिश्ते बनते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशंस में क्योंकि आज एडजस्ट करने की शक्ति किसी के अंदर नहीं है, आज समाने की शक्ति नहीं है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो सुनने की शक्ति नहीं है, टॉलरेट करने की शक्ति नहीं है, है ना, क्योंकि सिखाया ही नहीं किसी ने टॉलरेट करना, तो और सब अपने हिसाब से, क्योंकि जैसा हम देखते हैं हम हर चीज में आजादी चाहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बातों को हमने जो सुना उसको सही तरीके से समाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो गलत तरीके से जब जाती है तो हमारी सोच गलत बनती है और हमारे रिलेशन गलत बनते हैं। छोटी सी बात है कि मान लीजिए एक सच्चा उदाहरण है जो हमारे सामने आया और उसको हमने कैसे डील किया वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। बहू की, लड़की की शादी हुई, नए घर में गई, बड़े सपने लेकर गई, और उसने जाके अपने सब तरह से सबको खुश करने की कोशिश करी, अच्छा खाना बनाऊं, सबकी केयर करूं, अब सब उसकी तारीफ भी करने लगे, लेकिन सास कभी भी तारीफ नहीं करती थी, वो अच्छे से अच्छे बनाए खाने में भी कमी निकाल देती थी, कभी कहती थी तूने टेबल ठीक नहीं लगाई, कभी कहती है दही की तो कोई आइटम ही नहीं बनाई, कभी कहती है हल्दी ज्यादा डाल दी, तो कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देती थी और नई नई बहू सब तारीफ करते जैसी सास कुछ टोक देती सबके बीच में उसको बुरा लग जाता, कमरे में जाके रोती, पति के आगे कहती, खुद माँ को फोन करती कि मेरी सास मुझे पसंद ही नहीं करती है। अब छोटी सी समझदारी की बात है कि सब कुछ ठीक किया है, इसमें दो बातें सोच सकते हैं कि चलो जो भी चीज़ उन्होंने कमी बताई अगर मैं इसको ठीक कर लूँगी तो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन कई बार उसी लेवल की मैच्योरिटी नहीं होती। दूसरी सोच ये भी हो सकती है, मतलब ये बात हमको भी जो हम रिलेशन में लगते हैं हमको भी समझाने की बात है कि देखो माँ अभी तक जो सास थी वो अभी तक घर की मालकिन थी, जो वो करती थी सबको बहुत अच्छा लगता था, उसी का नाम होता था, वो घर की रानी थी। अभी जब से बहू आई सबने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी, बहुत सुशील है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, सबका आदर बहुत करती है, तो एक इनसिक्योरिटी होना कई बार एक नेचुरल बात है ना। तो उसको अगर बहू मैच्योरिटी से समझ ले और थोड़ा सा इतना ही कह दे, हमने उस लड़की को यही समझाया कि आप पहले ही अपनी मदर इन लॉ को अप्रिशिएट करो और उनको कोई जब कहे ना खाना अच्छा बनाए, नहीं अच्छा तो है लेकिन मम्मी जी जैसा अच्छा मैं नहीं बना सकती, ये तारीफ करते हैं मम्मी की हाथ की वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, मम्मी आप मुझे सिखाइएगा कैसे बनाया आपने, तो छोटा सा ये कहना है ना, उनको बड़े को बड़े की जगह रखकर मान देना तो आपने उनके दिल में जगह बना ली। और जरूरी नहीं एक बार में ही होगा, हो सकता है साल लग जाए, लेकिन अगर हम उनको बड़ा ही रखेंगे तो उनके दिल में भी हमारे लिए जगह आ जाएगी और उनको जो थोड़ी इनसिक्योरिटी आई वो खत्म हो जाएगी। ऑन द अदर केस अगर यहाँ सासू बैठी हैं तो वो भी इस तरह से उठ सकती हैं कि वो नई नई आई है, इतना कुछ कर रही है तो क्यों ना मैं उसको थोड़ा सा और अप्रिशिएट करूंगी तो वो इससे भी बढ़ के करेगी, है ना। तो उसको उस रूप से देखा जाए, लेकिन होता क्या है आने से पहले रिश्ता बनने से पहले हमारी सेटिंग जो होती है, प्रोग्रामिंग जो होती है वो कैसी होती है, इसमें बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मुझे याद है एक लड़की की शादी हो रही थी तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा कुछ भी हो लेकिन कभी भी हस्बैंड और अपने सास ससुर के रिलेशन के बीच में नहीं आना, हमेशा कोशिश करना उससे अलग रहना, आपका रिश्ता अलग है, उन दोनों के रिश्ते में कभी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उसको उस टाइम मेरी बात शायद समझ नहीं आई, लेकिन एक साल बाद वो मेरे पास आई, कहती भाभी आपने मुझे जो बात समझाई थी उसका मतलब मुझे अब समझ आया। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहाँ बीच में कहीं वो मुझे इम्पोर्टेंस दे देते हैं लेकिन मैं हमेशा मम्मी पापा को इम्पोर्टेंस देके उनके बॉन्ड को बनाए रखती हूँ तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो हमारे बीच में गैप्स ले आती हैं और छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो हमारे बॉन्ड को स्ट्रांग कर देती हैं। तो अलाउ ऑलवेज पॉजिटिव इनपुट्स हमारे साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जरा सी कान में बात आई कहीं से, हमारा नाम ही कहीं हमने सुन लिया, ऐसे कान खड़े हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं हमारे लिए, और सोच पहली क्या चलती है, जरूर मेरी बुराई कर रहे होंगे। किस किस को ऐसा होता है, कई बार कहीं दो जने बात कर रहे हो और आपका आपकी आवाज आपका नाम सुन ले आप तो कान खड़े हो जाते हैं, जरूर बुराई कर रहे होंगे, एक दूसरे को नहीं देखिए, है ना, ऐसा आता है कई बार, फीलिंग आती है क्यों हम इतने बुरे हैं, बुराई क्यों करेंगे, हमारे लिए तारीफ भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन एक प्रोग्रामिंग है कि वो बात कर रहे हैं मेरी तो बुराई ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच की रिफ्लेक्शन भी हमें सामने से महसूस होती है, तो अपनी उस सोच को भी हम ठीक करें। एंड चलिए एक और पजल करते हैं, इस एक्टिविटी से भी कुछ समझते हैं कुछ चीजों को, इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए। आप सब एजुकेटर्स हैं इसलिए आपके लिए थोड़ा दिमाग चलाने की चीजें लेकर आए आज हम। जिसको आंसर आए वो हाथ खड़ा करे और अपना आंसर बताए, बताइए। हाँ माइक थोड़ा तैयार रखिए क्योंकि यहां तक आंसर सुनाई नहीं देगा। हाँ जी
17
ओके जी। आप हाथ से लिखकर बता सकते हैं, हैंड एयर राइटिंग 60 ओके
51
51 जो आ चुके हैं वो नहीं रिपीट कीजिए, आपका आंसर अगर आ चुका है तो. हाँ जी 51 55 15 ओके ठीक है
मैम
52 15 ओके 52 42 ओके
41
ओके 41 55 ओके
60 103 60 60 60
लिखकर बताइए
60 60 60
आ चुका है, जो आ चुके हैं उनको नहीं बोलिए, वो आंसर्स आ चुके हैं ऑलरेडी.
15 15
भी आ चुका है स्क्रीन पे देखिए.
यही सही.
हाँ अच्छा चलिए. हाँ
31 41 31 17 200 41 16
वो आ चुका है
16
अच्छा 55 आ चुका है. ओ 16 आ चुका है मैडम. जो आ चुके वो रिपीट नहीं कीजिए, आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए आ चुके. स्क्रीन पे जरा शीट दिखा दीजिए. अच्छा अब ऐसा करते हैं
48
ओके. अच्छा अब ऐसा करते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं.
52
सबसे पहले मैं हाथ खड़ा कराना चाहूंगी. 51 किसने कहा? ओके प्लीज इनको माइक दीजिए, ये एक्सप्लेन करेंगे 51 कैसे आया. और आप सभी ध्यान से सुनेंगे.
हाँ जी ये फर्स्ट रो दी हुई है, तीन फ्लावर है एंड दैट्स इक्वल टू 30. ईच फ्लावर इज इक्वल टू 10. 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30. नेक्स्ट रो फ्लावर और ये लीव्स दिए हुए हैं एंड दैट इज इक्वल टू 20. फ्लावर ऑलरेडी इज इक्वल टू 10 एंड टू प्लेसेस पे ये लीव्स दिए हुए हैं एंड दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 20. वो हाँ नेक्स्ट रो में लीव्स इज इक्वल टू 5 माइनस समथिंग इज इक्वल टू 3. यहां पे दो कली दी हुई है एंड ईच कली इज इक्वल टू 1. 1 प्लस 1 टू कली, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. एंड इन द लास्ट रो एक कली दी हुई है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस फ्लावर दिया है दैट वाज इक्वल टू 10 एंड लीव्स वाज इक्वल टू 5. देयरफॉर 10 मल्टीप्लाइड 5 इज इक्वल टू 50 प्लस 1 इज इक्वल टू 51.
ओके थैंक यू सर.
थैंक यू.
अच्छा डू यू ऑल एग्री? अच्छा यहाँ मैडम को दीजिए. मैम खड़े होइए आप. हाँ तो आपको अच्छा बताइए.
मैंने भी 51 बोला था लेकिन मैं से एक मिस्टेक हो गई. इसमें 5 पंखुड़ी की जगह 4 ही है. वो एक पंखुड़ी जो है अब वो सिर्फ 4 को डिफाइन करेगी, इसलिए 4 × यहाँ 10 40 प्लस 1 41 होना चाहिए. ये मिस्टेक हुई है.
सर कहते हैं कि ये जो लीव्स हैं ये 5 नहीं 4 हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए. 4 × 10 + 1 = 41. डू यू ऑल एग्री? एग्री? ओके अच्छा मैम को दीजिए.
स्क्रीन पे चला गया, स्क्रीन लगाइए प्लीज.
माइक पे बोलिए मैम.
स्क्रीन चला गया है.
हाँ जी
1 + 10 = 11. 11 × 4 44.
ओके मैम का कहना है पहले एडिशन करेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे. डू यू ऑल एग्री? अच्छा ध्यान से सुनिए मैम क्या कह रहे हैं.
हेलो मैथ्स का नियम है भाग. मैं गुजरात से हूँ એટલે ભાગાકાર ગુણાકાર સરવાળો બાદ બાકી
બોડમાસ કા રૂલ હા
ભાગુ સબા મતલબ 4 મલ્ટીપ્લેન્ડ 10 મીન્સ 40 40 પ્લસ 1 41 ઇક્વલ 41.
સભી સહમત હૈ બોડમાસ કે રૂલ કે હિસાબ સે? હાથ હિલા કે બતાઈએ. ઓકે તો બહુમત એવરીબડી ઓકે વિથ 41. ચલિયે તાલી બજા લીજિયે. 41 इज द करेक्ट आंसर. अब मेरा आपसे सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा. आप सब एजुकेटर्स बैठे हैं, आप लोगों ने जैसे ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया था ना, मुझे पता था इसका आंसर 41 ही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता. लेकिन आपने जब आंसर देने शुरू करे, किसी ने 17, किसी ने 16, 42, 48, 51, 41 भी किसी ने कहा, है ना, तो मैंने सभी के आंसर्स बड़े रिस्पेक्ट से लिए. मैंने किसी को ऐसा नहीं कहा अरे आप एजुकेटर हो के 17 आंसर दे रहे हो, आप मैथ्स टीचर हो के 15 आंसर दे रहे हो, ऐसे कैसे, है ना. मैंने किसी के आंसर को मना नहीं करा, इक्वल रिस्पेक्ट दी. क्या आप बता सकते हैं क्यों मैंने इक्वल रिस्पेक्ट दी? मैंने इसलिए आप सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी, आपके हर आंसर को रिस्पेक्ट दी, क्योंकि आप में से गलत कोई नहीं था. आप कहेंगे ऐसे कैसे, आंसर तो 41 है. मैथमेटिकली आंसर 41 है, लेकिन आप में से कोई गलत इसलिए नहीं था क्योंकि अगर आप में से एक एक से पूछा जाए तो किसी ने भी यहां गेस्टवर्क नहीं किया है. हर एक ने जो मेथड सही समझा, जिसको जो दिखाई दिया, 5 लीव्स दिखाई दी तो उस हिसाब से किया, 4 दिखाई दी तो उस हिसाब से किया, 2 कलियां दिखी या 1 कली दिखी, मल्टीप्लीकेशन पहले या एडिशन पहले, जिसको जो सही लगा उसने उस हिसाब से कैलकुलेट करके आंसर दिया. तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही थे, तालियां बजाइए. गलत एक भी नहीं था, although arithmetically आंसर गलत था, राइट. तो थोड़ा सा इस बात को समझना है रिश्तों के अंदर कि गलत कोई नहीं होता, अपने दृष्टिकोण से सब सही होते हैं. अगर इस एक बात को हम पकड़ लेंगे ना, तो हम अपने रिश्तों को, अपने दृष्टिकोण को बहुत सुख में बना सकते हैं, बहुत सुख में. क्योंकि सारी प्रॉब्लम कहां होती है? आप गलत, मैं सही. छोटी छोटी बातों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन जैसे ही हम सामने वाले को एक्सेप्टेंस देते हैं, ना ना कह के हम इतना कह सकते हैं, जैसे मैंने आप में से किसी से कहा नहीं 41 किसने बोला, हाथ खड़ा कीजिए, राइट आंसर, तालियां बजाइए उनके लिए, नहीं कहा. रॉन्ग वाले को भी कुछ नहीं कहा. मैंने पूछा अच्छा 51 वाले बताएं आपका कैसे आया, 55 वाले बताएं कैसे आया. I just ask you to explain your point of view. Correct? आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या सोचना है. और मैंने फिर आपकी सोच सुन के ये भी नहीं कहा कि आप गलत हैं. मैंने बाकियों से पूछा अच्छा आपका क्या सोचना है, फिर किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, फिर बहुमत ने कहा कि नहीं 41 करेक्ट है, क्योंकि सबने उस बात को समझा कि क्यों 41 करेक्ट है. लेकिन मैंने ना किसी को सही कहा, ना किसी को गलत कहा, ना किसी को आईब्रो रेज करके कहा कि भाई आपने ऐसा कैसे आंसर दिया. तो सम्मान देना और एक्सेप्ट करना, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मान लीजिए, आज एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूं. मैंने क्लास में आज टेबल्स कराई बच्चों को, 10th तक की टेबल्स कराई, और मैंने कहा आज रिवाइज करके आना, कल पूछूंगी. अगले दिन मैंने बच्चों से पूछा कि अच्छा बताओ टेबल्स रिवाइज करी, सभी ने इकट्ठे यस मैम. इमीडिएटली मैंने क्वेश्चन पूछ लिया बताओ 6 × 6 क्या होता है. 40 बच्चों में से 15 बच्चों के हाथ एकदम से
तो एक बच्चा कभी आंसर नहीं देता था. मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा हाँ बेटा आप बताओ. मैं बड़ी खुश हुई कि आज इसने भी याद करके आया है. उसने हाथ खड़ा किया. उसने खड़े होते ही बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, मैम 49. मैंने कहा आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना है, मैंने क्या पूछा है. वो समझ गया गड़बड़ हो गई आंसर में. आप सब अनुभवी हैं इसके. फिर भी मैंने कहा अच्छा बोलो आंसर, सोच के बोलो. वो चुप हो गया. मैं समझ गई, घबरा गया. मैंने बच्चे को बिठा दिया. मैंने यहां से दूसरे बच्चे को उठाया. मैंने कहा हाँ आप बताओ. उसने कहा 36. मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट, क्लैपिंग फॉर दैट चाइल्ड. दूसरे क्वेश्चन पे मैं आ गई. क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, लेकिन उस बच्चे के मन में क्या चल रहा है? उसके मन में चल रहा है, मैं इसीलिए हाथ नहीं उठाता, मैं हमेशा गलत आंसर देता हूं. आज पता नहीं इतने अच्छे से याद करके आया था, फिर भी भूल गया, फिर भी याद नहीं आया, फिर मिस्टेक हो गई. सारे बच्चों के सामने मैम के ऊपर कितना बुरा इंप्रेशन पड़ा. आज के बाद मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा. अच्छा, ये जो उसके अंदर बिलीफ डेवलप हो रहा है अपने बारे में, लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो रही है, सेल्फ डाउट डेवलप हो रहा है, इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने तो उसको डांटा नहीं, मैंने तो उसको गलत नहीं कहा, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती थी, मैंने उसके आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया. एक्सेप्ट नहीं किया क्या मतलब हुआ इस बात का? एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं मैं कह दूं सही आंसर दिया, लेकिन मैंने उसके आंसर को रिजेक्ट किया. एक्सेप्ट करने कैसे कर सकती थी? मैं कह सकती थी ओके 49, कैन यू एक्सप्लेन कैसे आया, कैन यू टेल द टेबल. मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ सकती थी, अच्छा बताओ 7x7 क्या है? तो शायद उसके मन में आता 7x7 49 था, तो 6x6 क्या है? और हो सकता कुछ भी ना आता. लेकिन जब मैंने 6x6 जिसने 36 बोला, मैं उससे भी तो पूछ सकती थी एक्सप्लेन करो कैसे आया, क्योंकि हम हमेशा जो गलत होता है उसी से पूछते हैं ऐसे कैसे आया, है ना. सही वाले से भी अगर पूछें तो शायद वो जो एक्सप्लेन करेगा, हो सकता है इस बच्चे को मेरी बात समझाई ना समझ में आए, लेकिन इसकी बात समझाई हुई समझ में आ जाए. आप अपने स्कूल के बेस्ट टीचर हो सकते हैं, और आपने एक्सपीरियंस किया होगा आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 38 स्टूडेंट्स आपकी बात समझ जाते हैं, लेकिन 2-4 ऐसे होते हैं जिनको आपकी बात नहीं समझ में आती. इसका मतलब ये नहीं कि उनकी समझ कमजोर है, लेकिन उनका लर्निंग स्टाइल और हमारा टीचिंग स्टाइल मैच नहीं करता. और इसीलिए वही बच्चे जब कोई और किसी और तरीके से समझाता है तो उनको समझ में आ जाता है. तो लेट्स एक्सेप्ट दिस ऑल्सो कि वीक, ऐसा नहीं कि हम ही हर चीज बेस्ट कर रहे हैं. गिव एवरीबडी एन अपॉर्चुनिटी, हर एक के ओपिनियन को सुने. और कई बार ओपिनियंस को सुनने से चाहे हम भले ठीक ही थे, लेकिन हमें भी एक नया दृष्टिकोण मिलता है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है उसी बात को सोचने का. घर में भी हर रिलेशन में मैं कहूंगी इस पॉइंट को आप चेक करके देखिएगा. प्रॉब्लम यही होती है कि हर बात में हमें लगता है हम पेरेंट हैं, हम ठीक बोल रहे हैं, बच्चा गलत बोल रहा है. मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछती हूँ. मान लीजिए 16 साल का आपका बच्चा है, आज उसके स्कूल में कुछ बच्चों ने मिलके वॉशरूम में जाके सिगरेट स्मोक करी. अब उसने सबको देखा, उसने घर आके आपको, जैसे वो हर बात बताता है, उसने आके आपको बता दी, मम्मी पता है आज मेरे सारे फ्रेंड्स मिलके ना ऐसे स्मोकिंग कर रहे थे. अब आपकी तो आंखें, सारा काम छूट जाता है और आंखें बड़ी बड़ी, स्मोकिंग कर रहे थे इस उम्र में, तुम स्कूल में ये करने जाते हो, कौन से बच्चे हैं, तूने तो नहीं करा. हमारी क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, डाउट करना शुरू हो जाता है. हम कहते कौन है तेरे फ्रेंड, जरा बता, कल ही आती हूँ प्रिंसिपल के पास. और फिर बच्चा एकदम से सहम जाता है, मम्मी नहीं नहीं ये किसी को बोलना नहीं है, मेरे फ्रेंड्स मुझे अलग कर देंगे, मेरे को हो सकता है बॉयकट कर दे मेरे से, आप किसी से बोलना नहीं, मैंने तो आपको ऐसे ही समझाया था, ऐसे ही बताया था. तो आप उसको वार्निंग देते हैं, वो करें जो भी करें, कल से तू उनके साथ बातचीत बंद, तुझे ऐसी कंपनी नहीं रखनी है. और तुझे ऐसा अगर तूने किसी दिन कर लिया ना स्मोकिंग, तो देखियो मेरे से बुरा कोई नहीं. बड़ी बड़ी आंखों के साथ आपने पूरी वार्निंग दे दी उसको, मेरे से बुरा कोई नहीं. अब बच्चे ने समझ लिया कि मम्मी जब स्ट्रिक्ट होती है, पापा जब स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बस उनसे बुरा कोई होता भी नहीं है, अनुभवी है. अब अगले दिन जब स्कूल में जाता है और बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, और उसको भी कहते हैं,
कि चल तू भी एक बार ट्राई तो करके देख कैसे गोल गोल छल्ले बनते हैं। अब उसको भी मन तो कर रहा है अंदर से ट्राई तो करूं, लेकिन शाम की बात याद आ गई, मम्मी से बुरा कोई नहीं होगा। उसने कहा नहीं नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, मेरी मम्मी से डांट पड़ेगी। अब बच्चे छोड़ेंगे क्या उसको, बच्चे क्या कहेंगे? तो ये मम्मी से पूछ के कौन सिगरेट स्मोक करता है, तुझे क्या लगता है हमारी मम्मी ने लाइसेंस दिया रिटर्न के अंदर कि तुम स्मोकिंग कर सकते हो? ये तो ट्राई करने हम कौन सा एडिक्ट बन जाएंगे, ट्राई तो करना ही चाहिए। अब उसका मन कर रहा है लेकिन वो फिर भी कोशिश करके अपने आप को रोक लेता है। अब मेरा आपसे पूछना है कि स्मोकिंग करना गलत है, मानते हैं, लेकिन एक 16 साल के बच्चे का मन करना कि मैं भी स्मोकिंग करके देखूं, क्योंकि वो शाहरुख खान जब स्मोक करता है उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, सलमान खान स्मोक करता है इतनी लड़कियां उसके आसपास आ जाती हैं, मेरे फ्रेंड स्मोक कर रहे हैं क्या एंजॉय कर रहे हैं, उस 16 साल के बच्चे का मन करना कि मैं स्मोक करूं वो गलत है? वो गलत है? मन कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। एक्शन गलत है लेकिन उसकी भावनाएं क्या गलत हैं? क्या हम उस उम्र से नहीं गुजरे? क्या हमारी उम्र में हमारा मन नहीं करता था लेकिन हमारे संस्कार इतने स्ट्रांग थे कि हम में से ज्यादातर बचे रहे और शायद कुछ ने ट्राई भी किया होगा, है ना? लेकिन आज बचे हुए थोड़े से हैं, बाकी तो सभी ट्राई करते हैं, और जो बचे हुए हैं उनका जीना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पीयर प्रेशर, वो प्रेशर इतना होता है, और उस प्रेशर को समझना क्या हमारा फर्ज नहीं है? तो उसकी उस इमोशन को, उस फीलिंग को एक्सेप्ट करना। अब आप कहेंगे तो क्या करें, उनको स्मोकिंग करने दें? एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप एग्री करते हैं और आपने अलाउ कर दिया। एक्सेप्टेंस का मतलब है आप उनकी भावनाओं को सम्मान देते हैं, समझते हैं, यू अंडरस्टैंड। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जब बच्चा ये बात बता रहा है उसके लेवल पर आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर एक कंफर्ट जोन में लाकर उसको बोले समझती हूं मैं बेटा इस उम्र में मन करता है, हमारा भी करता था, हमारे साथ भी ऐसा होता था। तो जहां आपने उसकी भावनाओं को एक्सेप्टेंस दी वहीं वो आपकी तरफ रुक हो गया उसका। नहीं तो बच्चे आज क्या कहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको समझते ही नहीं है, उनका टाइम और था हमारा टाइम और है। वास्तव में टाइम और नहीं था, भावनाएं तब भी वही थी आज भी वही हैं, लेकिन समय परिवर्तन इस रूप से हो गया, परसेंटेज का फर्क हो गया। हम चाह के करते नहीं थे, आज चाह के वो सब कुछ कर लेते हैं। तो अगर हम उनकी भावनाओं को उसी टाइम एक एक्सेप्टेंस दे दे कि ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता था, लेकिन पता है हमने क्या किया? और ये बातें मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं बता रही हूँ, आप खुद से महसूस कर सकते हैं, सबके बच्चे हैं घर में, स्टूडेंट्स हैं आपके पास इतने, है ना? और मेरे खुद के दोनों बच्चे अभी दोनों कॉलेज में आ चुके हैं और मैंने खुद इस बात को एक्सपीरियंस किया, क्योंकि अपने आसपास जब ये सब चीज़ें होते देखते थे उस टाइम पर बच्चों के साथ वो इमोशनल बॉन्ड बनाना, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को एक्सेप्ट करना, रिजेक्शन नहीं, ऐसा कैसे सोचा तुमने? अरे सोच सकता है बच्चा इस उम्र में। और अपने अनुभव भी बताइए कि हमारे साथ जब होता था तो हम कैसे अपने आप को, हम किसके साथ शेयर करते थे, हमारी क्या सोच रहती थी जिससे हमने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल किया? तो क्या होगा जहां वो 10 बातें बाहर की देखेगा कि वो भी करता, वो भी करता, वो भी करता। आप यहाँ 10 एग्जाम्पल अपने घर के दीजिए कि अच्छा ऐसे बचा जा सकता है, ऐसे बचा जा सकता है, ऐसे बचा जा सकता है। तो इनपुट तो जाएगा ना कि ये परसेंटेज भी है लेकिन ये परसेंटेज भी है, क्योंकि अभी सिर्फ वो इन्फ्लुएंस किसका आ रहा है, बाहर के लोगों का। लेकिन अगर हम अपना बॉन्ड बना के रखेंगे, अपने रिश्ते को स्ट्रांग रखेंगे, और वो तभी आ सकता है व्हेन यू हैव द पावर टू एक्सेप्ट। आपने जहां रिजेक्ट किया, जहां उसको आंख दिखाई, तो उसने अगली बार, दो बार, चार बार जब उसके फ्रेंड्स उसको उकसाएंगे शायद उसका मन कर जाए और वो रोक ना पाए, लेकिन जिस दिन वो करके आएगा उस दिन आपको बताएगा, क्योंकि उसको पता है मम्मी से बुरा तो कोई है नहीं। और मैंने कौन सा एक ही बार तो किया है, क्या बताना है? फिर वो एक बार कब चार बार हो जाएगा और कब एक आदत बन जाएगी और हमें पता भी नहीं लगेगा, और जब पता लगेगा बहुत लेट हो चुकी होगी। तो रिश्तों के अंदर, हर रिश्ते के अंदर मैं ये कहूंगी, हम सुने, आज गणेश चतुर्थी है ना, उनकी विशेषताओं को हम याद करते हैं और उसमें एक विशेषता बताते हैं कि मस्तक बड़ा दिखाते हैं क्योंकि बुद्धिशाली हैं, कान बड़े बड़े दिखाते हैं दो, और मुख एक छोटा सा होता है। सिंबॉलिक है इस बात का, सुने ज्यादा बोले कम। खास हम जिनके हितैषी होते हैं, अपने बच्चों के खासकर, हम उनके बड़े भी हैं, हितैषी भी हैं, वेलविशर्स हैं, तो जैसे ही वो कुछ बात हमें बताते हैं, आप अपने को चेक करना, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी आधी बात सुनते ही आंसर तो हमारा क्रिएट हो चुका होता है और पौनी बात पे तो हम सुना ही देते हैं कि ये नहीं ये करना। एडवाइस तो हमारी हमेशा रेडीमेड रहती है, हर चीज की एडवाइस होती है, लेकिन मैं एक आज आपको बात कहूंगी अपने अनुभव से कि एडवाइस देने से पहले उनकी पूरी बात को सुने। बच्चे ही नहीं, किसी भी रिश्ते में कहने दीजिए उनको, पूरी बात सुनिए, थोड़ा चुप रहिए, समाइए बात को, और फिर उनकी उस बात को एकदम से रिजेक्ट नहीं कीजिए। बच्चे आजकल कहते हैं हमें लेट नाइट मूवीज जाना है, हमें नाइट स्टे के लिए जाना है। अब हम तो कभी नहीं गए, लेकिन बच्चे कहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं नहीं हमारे घर में अलाउड नहीं है। दो बार सुनते हैं, तीसरी बार कहते हैं अलाउड नहीं का क्या मतलब है, सभी जा रहे हैं, आप उसकी मम्मी से पूछ लो। और आजकल तो पेरेंट्स भी ऐसे हैं, फोन करके आपको कन्विंस करेंगे, हमारे फ्लैट में पार्टी हो रही है, आप आने दीजिए अपने बच्चे को। तो कोई तीसरा आप हमको इन्फ्लुएंस करे, उससे पहले ही हम अपने बच्चे के साथ ऐसा रिलेशनशिप क्यों ना बनाएं कि हम उन्हें शुरू से ये बात की समझानी दें कि इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं। हमें डराना नहीं है, बच्चों को धमकाना नहीं है, हमें हर चीज से रोकना नहीं है, लेकिन बचपन से समझ देनी है कि इसका ये रिजल्ट है, इसका ये रिजल्ट हो सकता है। यू कैन गिव देम एम्पल एग्जाम्पल्स, बाकी करेंगे तो वो वही जो उनको करना है ना। लेकिन शुभ भावना से एक्सेप्ट करें उनकी इमोशंस को और फिर उनकी बात को समझ के। मतलब मेरे सामने ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं तो मैं सुनती हूँ और मैं कहती हूँ अच्छा बात तो आपकी ठीक है, शुरुआत ऐसे नहीं करें, ऐसा कैसे सोचा, पहले क्या करें, बात तो आपकी ठीक है। हर रिश्ते में ये फॉर्मूला काम देगा आपको, हर रिश्ते में। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बात होती है, पॉइंट तो आपका सही है, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ अगर इसको ऐसे करें तो आप क्या समझते हैं। थोड़ा बात को रखने का एक तरीका होता है और ये एक बहुत बड़ी शक्ति है कि जब हम सामने वाले को थोड़ा सा भी एक्सेप्टेंस देते हैं कि आई एक्सेप्ट यू, ना बात ठीक है, तो एकदम से उनकी एनर्जी जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाती है, ऑपोजिट नहीं जाएगी, ऑपोजिट नहीं जाएगी। सो एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर रिलेशनशिप्स। और कई बार क्या होता है, हमारे संस्कार बड़े डिफरेंट होते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि ये ऐसे क्यों करते हैं, है ना। और हम उन्हें बहुत बार समझाते हैं, देखो तुम्हें कमरा ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें अपने जूते यहाँ नहीं छोड़ने चाहिए, तुम्हें गीले पैर लेके सारे कमरे में नहीं आना चाहिए, बाथरूम वाइप करना चाहिए, तौलिया बेड पे नहीं रखना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो हमको पसंद नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं, भाई अपना घर है ना, किराए का घर तो नहीं है। अब हमारा सालों से ये झगड़ा चल रहा है, ना वो बदले ना हम बदले, तो एक्सेप्टेंस में ही फायदा है ना। एक्सेप्ट कर लो, आपका वो मतलब उन्हें करने दो जो कर रहे हैं। एक्सेप्ट का मतलब ये है भाई उनका ये संस्कार है तो मुझे कैसे डील करना है वो देखना है। ऐसा नहीं कि उनको सिखाना नहीं है, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना, उसके लिए बहुत बोलते नहीं रहना। आप बोलते रहो उनको, अगली बार सुनाई भी नहीं दे रहा, आप बोल रहे हो, आप अपना खून फूंक रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, वो अपनी शान में ही घूम रहे हैं, वगैरह कर लेंगे। तो एक्सेप्टेंस का मतलब बहुत डीप है कि हम जो सामने वाले का संस्कार है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, मतलब एग्री नहीं करते, राइट नहीं है, लेकिन जिस चीज को हम अभी बदल नहीं सकते उसको स्वीकार करने में ही फायदा है। मुझे एक वाइफ ने कहा, जब मैं किसी से ये बात कह रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरा और मेरे हस्बैंड का 17 साल से एक बात पे झगड़ा चल रहा है। हमारी जब से शादी हुई है इनकी आदत है, इनका 5 बजे ऑफिस पूरा हो जाता है लेकिन घर में ये 8-9 बजे से पहले आते नहीं है, और बहुत झगड़े हो लिए, बच्चों ने भी बहुत कह लिया लेकिन ये आते ही नहीं है। मैंने कहा तो कहाँ जाते हैं? कहते कभी किसी फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, कभी इनके स्पोर्ट्स में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, लेकिन फैमिली को टाइम नहीं देते। तो मैंने कहा 17 साल से आप लड़ रहे हो इसी बात पे? मैंने कहा कुछ चेंज आया? 1 घंटा पहले आने लगे हो। कहती कुछ चेंज नहीं है। मैंने कहा फिर कितने साल और लड़ना है? कितने साल लड़ना है? जब चेंज नहीं आ रहा, वो नहीं बदल रहे, आप बदल लो। तो बोली क्या बदलूं मैं? इनका ये बदल लो, स्वीकार कर लो कि उनका वापसी का टाइम 9 बजे है। अभी मुझे अपने टाइम को किलस किलस के, उन पे गुस्सा करके, खुद परेशान होके, रो धोके, किस्मत को कोस के, मैंने ऐसे वो 4 घंटे बिताने हैं रोज? या मुझे अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा करना है? अच्छा ठीक है ना, मेरे पास ये घंटे हैं, अब मैं इससे अपनी कोई स्किल डेवलपमेंट करूं, अपना एंटरटेनमेंट करूं, अपनी कोई सोसाइटी या कुछ ऐसा ज्वाइन करूं जहां पे मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकूं। एक्सेप्ट कर लो ना, क्योंकि ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, इसलिए हमारे रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट सालों 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 चलते ही रहते हैं। स्वीकार कर लीजिए, हर एक का संस्कार अलग है। और इसमें स्पिरिचुअलिटी हमको बहुत हेल्प करती है। आपका कल चैप्टर हुआ ना आत्मा, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, ठीक है ना? अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने जब इस बात को समझा मेरा यहाँ का फोल्डर बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब एज अ पेरेंट मैंने देखा, मैं बिल्कुल 360 डिग्री बदल गई। क्या चीज इसमें खास बात है कि परमात्मा ने, हम उसकी रचना है, वो हमारा पिता है, मैं आत्मा ना, जैसे हमने जब यहाँ पे नॉलेज ली तो हमें बताया गया कि तुम्हारे 2 पिता हैं। तो हमने कहा 2 पिता कैसे हैं? कहते एक शरीर का पिता जिसका नाम फॉर्म पे लिखते हो, एक आत्मा का पिता, क्योंकि आप तो आत्मा हो उसका पिता, परम पिता परमात्मा। समझ में आया? बड़ी लॉजिकल बात लगी, अच्छी लगी। तो मैंने कहा हाँ, मैं परमात्मा की संतान, उसकी रचना हूं। तो उन्होंने कहा कि, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा वो सर्वशक्तिवान, उसने मुझे रचा है, उसकी मैं संतान हूं, तो उसने मुझे पावर्स तो दी नहीं, मैं तो बहुत कमजोर हूं। बचपन से स्कूल में जब थी तो स्टेज फोबिया, पब्लिक स्पीकिंग बिगेस्ट फियर्स थे मेरे जीवन के, आपको मैं बताऊं। और इतने हद तक थे कि पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन जब भी प्राइज लेने स्टेज पे जाना होता था तो पहली रात नींद नहीं आती थी, इतनी घबराहट होती थी कि स्टेज पे जाना, पूरा स्कूल मुझे देखेगा ना। बीइंग अ फीमेल, बड़ी बॉडी कॉन्शियसनेस थी मेरे अंदर, तो एक टॉर्चर सा होता था माइंड के अंदर कि क्या होना है, कल प्राइज मिलना है या क्या होना है, मेरे को क्या जाना, क्यों जाना है स्टेज के ऊपर, घबराहट होती थी। स्कूल टाइम में चाहते हुए भी कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाई, बहुत सारी स्किल्स होते हुए भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, अपने बारे में लो सेल्फ एस्टीम थी। फिर उसके बाद कॉलेज में आई तो वहां तो जैसे सागर में छुप गए, पता ही नहीं लगा। हालांकि मैंने अपनी स्ट्रीम में टॉप किया लेकिन कभी अपनी स्किल्स को शोकेस नहीं कर पाई। शादी के बाद भी घर में 2 लोगों के आगे अपनी बात को नहीं रख पाती थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन 15 साल पहले जब ब्रह्मा कुमारीज में आई तो थी मैं अपना कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन जब मैंने 7 डेज कोर्स किया तो वहां पर मुझे बड़ी अच्छी बात ये बताई गई कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जैसे एक सोल कॉन्शियसनेस आई कि मैं तो हूं ही नहीं, मेल फीमेल की बात ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा के अंदर 7 गुण हैं। और जब ये बताया आपके 2 पिता हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये था कि वो मेरा पिता है तो वो सर्वशक्तिवान, उसने मेरे अंदर शक्तियां क्यों नहीं भरी, मुझे कमजोर क्यों बनाया? और वो बचपन के डर जो थे वो बड़े होकर इतने सारे डर हो गए थे, अंधेरे से डर, अकेले जाने से डर, घर का कोई मेंबर लेट आता था तो इतने नेगेटिव ख्याल आते थे, इतनी घबराहट हो जाती थी, तो वो कई प्रकार के डर, इनसिक्योरिटी के डर, ये सब अंदर डेवलप होते चले गए। तो मैंने कहा मैं तो बहुत कमजोर हूँ, वो सर्वशक्तिवान की संतान इतनी कमजोर कैसे है? तो दीदी ने बहुत अच्छी बात कही मेरे को, उन्होंने कहा कि अदिति आपकी तरह पूरी दुनिया में कोई दूसरा हो जो आपकी तरह दिखता हो, आपकी तरह बोलता हो, आपकी तरह सोचता हो, आपकी तरह हर काम करता हो तो लेकर आओ।
तो मैंने कहा दीदी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दीदी ने कहा यही बात आपको समझ नहीं है, क्योंकि मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं हमेशा किसी को देखती थी स्टेज पे बोलते ना तो मेरा दिल होता था मैं उसकी तरह बोलूं, मैं उसकी तरह दिखूं, मैं उसकी तरह करूं, देख के उन्हें खुशी होती थी लेकिन मेरा दिल होता था मैं भी वैसी बनूं। तो दीदी ने कहा जो वो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आप जिस तरीके से उस काम को कर सकते हो वैसा एग्जैक्टली पूरी दुनिया में दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उस तरह से कर सके। और उस दिन मेरे अंदर अपने प्रति अपने आप को देखने का दृष्टिकोण 360 डिग्री टर्न हो गया, क्योंकि उससे पहले हमेशा सोचती थी उसके जैसा दिखना, उसके जैसा बोलना, उसके जैसा बनना है। उस दिन समझ में आया उसने मुझे इतना यूनिक बनाया, मुझे मेरे जैसा ही बनना है, क्योंकि मैं मेरे जैसे नहीं बनी तो कौन बनेगा। और उस दिन से अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया, क्योंकि हमेशा एक रिजेक्शन की एनर्जी थी कि मेरे को ये नहीं आता, मुझे मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, और वो मेरी लो सेल्फ एस्टीम बढ़ती जा रही थी। लेकिन परमात्मा ने जो यहां पर मुझे नॉलेज मिली, सबसे पहले मुझे मेरा खुद के साथ संबंध अच्छा हुआ, खुद को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखने लग गई, एक्सेप्ट किया और एक्नॉलेज किया अपनी स्ट्रेंथ्स को, मेरे अंदर क्या अच्छाई है। जब मैं उसकी संतान हूं तो उसने डेफिनेटली मेरे अंदर बहुत कुछ अच्छा भरा है, बहुत विशेषताएं हैं। और मैंने इसके ऊपर मेडिटेशन करना शुरू किया, मैं एक विशेष आत्मा हूं, परमात्मा की बहुत यूनिक क्रिएशन हूं, आई एम अ वेरी ब्यूटिफुल यूनिक स्पेशल क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं, परमात्मा ने मुझे बहुत सुंदर रूप से रचा है, इस धरती पर मैं कुछ खास करने आई हूं, ही नोज, माई क्रिएटर नोज द पर्पज, बट मुझे आज से अपनी जिंदगी में हमेशा यस करना है, ना नहीं करना। तो जब वो रिश्ता अपने साथ बना, अपने आप में वो स्वमान आया, स्वमान, खुद को मान देना सीखा, उसके साथ संबंध बना कि वो मेरा क्रिएटर है, उसकी रचना कितनी सुंदर होगी, इस शरीर को रचने वाले की रचना में कमी हो सकती है लेकिन परमात्मा तो परफेक्ट है, उसकी रचना में इतना सा भी फॉल्ट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ही हैज मेड मी परफेक्ट, आई हैव टू सी माई सेल्फ एज परफेक्ट। और जब वो देखना शुरू किया तो अपने अंदर वो शक्तियां आती चली गईं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे अंदर तो आई आई लेकिन धीरे धीरे मेरा दृष्टिकोण अपने बच्चों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपने हर संबंध के प्रति चेंज होता गया कि ये आत्मा भी बहुत विशेष है, ये आत्मा भी परमात्मा की संतान है, शरीर से ये मेरा बेटा है लेकिन वैसे ये परमात्मा की संतान आत्मा है। मैं पहले बहुत कंपैरिजन करती थी अपने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम 3 और 5 साल के, और उस टाइम मैं बड़ा कंपैरिजन करती थी, छोटे को कहती थी देख बड़ा भाई कितने अच्छे से पढ़ता है तू नहीं पढ़ता, बड़े को कहती थी देख छोटा कितने अच्छे से खाना खा लेता है तू नहीं खाता मुझे परेशान करे रखता है, दोनों को दोनों की कमियां बताती थी और एक दूसरे से कंपेयर करती थी। अधिकतर हम माता पिता ऐसे करते हैं बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, बट कंपैरिजन इज नेवर अ गुड मोटिवेशन, नेवर अ गुड मोटिवेशन। आप ही सोचिए आपके घर में आप दो बहुएं हैं, आपने बड़े दिल से कोई सब्जी बनाई जो आपकी जिठानी या दोरानी बनाती है ना, आपने सोचा आज मैं भी ट्राई करती हूँ, लेकिन सासू माँ ने खाते ही का वो वाली बात नहीं है जो उसके हाथ में आती है, अब आप मोटिवेट होंगे क्या, आप कहेंगे अगली बार उसी से बनवा लेना फिर, है ना। तो कंपैरिजन इज नेवर अ मोटिवेशन। तो मैंने समझा इस बात को, एज अ मदर मैंने उनको आत्मा के रूप से देखना शुरू किया कि ये भगवान की वो स्पेशल रचना है जिनके अंदर बहुत शक्तियां हैं, बहुत पावरफुल हैं, ये विशेष हैं। और इस तरह से मैंने ये चीज देखी, मेरे पर्सपेक्टिव में जब चेंज आया तो बच्चों के अंदर भी चेंज आने लगा, क्योंकि अब मैं उसको उसकी विशेषता से देखती थी, उसको उसकी विशेषता से देखती थी। तो सबसे पहले तो मेरे अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ। आज आप देखो रिश्ते बिगड़ क्यों रहे हैं, मैंने इस बात को बड़ा डीपली देखा कि
कि जब दो बच्चे हमारे खुद के छोटे होते हैं, चाहे भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, भाई बहन हैं, हम इतना कंपैरिजन करते हैं, उन दोनों का इतना कंपटीशन करा देते हैं कि बड़े होते 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 वो एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं, वो चाहते हैं ये ना कर पाए तो अच्छा है मम्मी पापा मुझे ज्यादा प्यार करेंगे, वो सोचता है ये ना कर पाए तो अच्छा है मेरे को ज्यादा प्यार मिलेगा, मुझे ज्यादा घर में इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो बीज किसने डाला? हमने ही डाला। और कहीं ना कहीं ये बीज जिसको हमारे भारत में कहते हैं गर्भ संस्कार, गर्भ से ही बीज डलने शुरू हो जाता है संस्कारों का, तो है ना। और आत्मा का चैप्टर जो मैं आपको बता रही थी इतना इम्पोर्टेंट है कि समझ में आता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि हुआ ही होगा, आपके घर में दो बच्चे, किसके किसके घर में दो बच्चे हैं, दो तीन बच्चे, हाँ सबके घर में ऑलमोस्ट, आपके दोनों तीनों बच्चे सारे एक से संस्कार वाले हैं, किस किसके डिफरेंट हैं, और किसी किसी के तो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, है ना, कहेंगे पोल्स अपार्ट, एक ऐसा तो दूसरा बिल्कुल ऐसा। अब दोनों को एक ही परवरिश मिल रही है लेकिन दोनों के डिफरेंट संस्कार क्यों हैं, डिफरेंट क्वालिटीज क्यों हैं? क्योंकि आत्मा अपनी जर्नी पर है। इस शरीर में आने से पहले भी मैंने कई शरीर लिए हैं और हर शरीर में मैंने कई रिश्ते बनाए हैं, हर शरीर के द्वारा मैंने कई कर्म किए हैं, कई अनुभव किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। वो कर्म और कर्म से बनने वाले संस्कार हर जन्म में मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। कहते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। स्थूल जो फिजिकल चीजें हैं ना वो लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे, लेकिन कर्म और संस्कार ये सटल चीजें हैं जो आत्मा अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करती है। तो आज मैं जो हूं, मेरी जो पर्सनालिटी है, वो मेरे आज तक के जितने भी जन्म मैंने लिए, जितने भी शरीर लिए, उन सब जन्मों की जो मेरे कर्मों की सम है, टोटल सम, वो मेरी आज पर्सनालिटी के रूप में और मेरे कार्मिक अकाउंट के रूप में मेरे साथ है। आपसे क्वेश्चन, जो आज मैं हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इतने जन्मों में, क्या वो आप में से किसी के साथ मैच कर सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल है मेरे इतने जन्मों के संस्कार और मेरे कर्म आपसे किसी से भी मैच कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं अपने आप को आप में से किसी के साथ भी कंपेयर करूं, राइट है? क्योंकि ना मेरा कर्म सेम है, कर्म के आधार से ना भाग्य सेम है, ना मेरे संस्कार सेम है, और फिर हम कंपैरिजन करते हैं अपने दो बच्चों का, अपने बच्चे का पड़ोसी के बच्चे से, अपने बच्चे का उसके कजिन से, अपने बचपन से हम कितना कहते हैं पता, जब हम तुम्हारी उम्र के थे हम ये करते थे। तो कंपैरिजन हम कर नहीं सकते क्योंकि हर आत्मा अपनी जर्नी पर है, अपने संस्कार लिए हुए है, इसलिए उनके जो संस्कार हैं उसको एक्सेप्ट करना, मतलब परेशान नहीं होना ये ऐसा क्यों है। काम करें हम उसके साथ, उसकी बातों को सुने, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि टाइम स्पेंड करने से हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, और वो जो छोटा छोटा इनपुट जाता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट प्रॉब्लम आज क्या है कि हम रिश्तों को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। मानते हैं इस बात को, आज समय नहीं है, ना बच्चों के पास समय है, ना हमारे जीवन साथी के पास समय है, ना हमारे पास समय है, ना घर के बड़ों के लिए समय है, ना छोटों के लिए समय है, ना अपने लिए समय है। समय तो एक ऐसा रिसोर्स बन गया है कि हमारी जिंदगी से जैसे है ही नहीं है, या नहीं ऐसा? एक छोटा सा रिफ्लेक्शन इस बात के लिए, आज सोच के बताइएगा आपको कितने दिन या हफ्ते या महीने, अपने को बताइएगा, मुझे नहीं, कितने महीने हो गए अपने घर वालों से आंखों से आंखें मिलाए हुए 5 मिनट भी बैठे हुए विदाउट एनी गैजेट और समथिंग के, सिर्फ आप उनसे उनकी आंखों में आंखें डालकर अटेंशन से सिर्फ उनसे बात कर रहे हैं, कितने महीने हो गए? याद भी नहीं होगा, बातें हो रही हैं एक दूसरे से, काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन अटेंशन नहीं देके कर रहे हैं। काम पे अटेंशन है, व्यक्ति पर अटेंशन नहीं है, रिलेशन पर अटेंशन नहीं है, है या नहीं ऐसा? हो रहा है नहीं हो रहा? और ये क्यों हो रहा है? एक सिंपल सा सीन बताती हूं। मम्मी जाती है बच्चों के कमरे में, बेटा आज क्या खाओगे डिनर में, बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है, बच्चा ऊपर देखता भी नहीं है, कहता है कुछ भी अच्छा सा बना लो मम्मी। फिर मम्मी पूछती है, वही तो पूछने आई हूँ, तुम्हारा अच्छा क्या होता है, मैं तो अच्छा ही बनाती हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अब बच्चा थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, प्लीज आप डिस्टर्ब मत करो, जो मन करे आप बना लो, अच्छा आज ये बना लो, ठीक है जाओ जाओ आप। मम्मी भी आ जाती है, बच्चा फोन पे लगा हुआ, आप गेम खेल रहा है या पढ़ाई कर रहा है पता नहीं। अब शाम को बच्चा आता है मम्मी के पास, मम्मी कल मेरा ना स्कूल के अंदर पिकनिक जाना है और मुझे ये सामान लेकर जाना है। अब मम्मी कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही है, हम बड़े तो वैसे भी इंपॉर्टेंट ही काम करते हैं, हम बाकी फालतू काम तो मोबाइल पे करते नहीं कभी कुछ भी, तो हम कुछ खास इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, हमारा ध्यान पूरा उधर है, हम करते जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। अब एक मिनट बाद बच्चा कहता है, मम्मी सुन रही हो? तो आप भी उसी टोन में कहते हैं, सुन रही हूँ, कान बंद नहीं है मेरे। अब बच्चे को ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ध्यान हमारा कहाँ है? एक बार भी हमने नजर उठा के उसकी तरफ देखा नहीं। और आज यही रिश्तों में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी अटेंशन हमेशा डिवाइडेड रहती है, काम करते हुए भी, संबंधों में आते हुए भी। और हम जिसे क्वालिटी टाइम कहते हैं ना, आपने सुना जरूर होगा, स्पेशली आप क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं तो आपको तो वैसे ही घर पर टाइम कितना कम मिलता होगा, कितना टाइम तो आपका स्कूल कॉलेज में जाता है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, टाइम कम मिलता है, इसलिए हमारे लिए क्या हिदायत दी जाती है, क्वालिटी टाइम दीजिए। अब क्वालिटी टाइम की क्या डेफिनेशन है जी? मैं ऐसा समझती हूँ, क्वालिटी टाइम उसको कहेंगे चाहे वो 5 मिनट का टाइम है, लेकिन अनडिवाइडेड अटेंशन से आपको 5 मिनट दे सकें तो वो 5 मिनट भी काफी हैं। उनको बिना कोई एडवाइस दिए केवल उनकी बात को सुन सके, अपनी गैजेट्स को साइड में रख के, तो वो क्वालिटी टाइम है। एग्री करते हैं? करते हैं, करते हैं तो जरा हाथ हिला के बताइए, क्या ये क्वालिटी टाइम देने को आप तैयार हैं? देंगे? जरूरी नहीं है वो लेना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी आदत पड़ी हुई है, उनको भी आदत नहीं है अपने गैजेट से आंखें हटा के आपसे बात करने की, लेकिन हमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कई बार पेरेंट्स से पूछती हूँ, आपसे भी पूछ ही लेती हूँ, पेरेंट्स कई बार कंप्लेंट करते हैं, हम अपने पेरेंट्स का आंखों से इशारा मान लेते थे, समझ लेते थे, हमारे बच्चे समझते ही नहीं है। मैंने कहा आंखों में देखे कितना टाइम हो गया है, ना आपने देखा है ना उन्होंने देखा है, तो इशारे कहाँ से समझेंगे आपके, है ना? तो इमोशनल कनेक्ट ही खत्म होता जा रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा समय, हम कितने भी बिजी हों, हम कितना ही कमा लेंगे, लेकिन इन रिश्तों को अगर हमने गवा दिया तो कुछ भी नहीं कमाया हमने। घर में जाते हैं थके हारे जाते हैं, बैटरी इधर की भी डिस्चार्ज है, शरीर की भी डिस्चार्ज है, और शरीर से ज्यादा यहाँ की डिस्चार्ज है। बच्चे घर में वेट कर रहे हैं, घर के बड़े वेट कर रहे हैं, या आएंगे तो हमारे लिए ये करेंगे, और हम ये सोच के जाते हैं हम जा रहे हैं तो वो हमारे लिए ये करेंगे, दोनों ही खाली हुए पड़े। लेकिन इसलिए परमात्मा हमको कहते हैं, राजयोग सीखने से और प्रैक्टिस करने से तुम आत्मा अपने आप को मेरे से कनेक्ट करके, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कनेक्ट करके अपने को एम्पावर करो और औरों को दो। नहीं तो आज क्या हो रहा है, सब संबंधों में, रिश्तों में क्या हो रहा है, मैं कह रही हूं मुझे प्यार दो, सम्मान दो, शांति दो, खुशी दो, वो कह रहा है मुझे प्यार दो, सम्मान दो, यही हो रहा है ना रिश्तों में, सब खाली एक कटोरा लेके जैसे एक दूसरे के आगे खड़े हैं, तू मेरे में डाल मैं तेरे में डालूं, लेकिन डाले कौन, जो भरा हो तो वो डाले। तो इसलिए भरना कैसे अपने आप को, चीजों से तो घर भर लिया लेकिन यहां से खाली होते जा रहे हैं, और यहां भरा हुआ है तो स्ट्रेस भरा हुआ है, टेंशन भरा हुआ है, बोझ भरे हुए हैं। तो परमात्मा हमें विधि सिखाते हैं राजयोग द्वारा, हम कैसे अपने मन को सदा लाइट रखें, चार्ज रखें। एप्रिसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिश्तों के बीच में ना, लेकिन ये एप्रिसिएशन की कला भी बड़ी कमाल की है, ये दूसरे के अंदर ताकत भी भर देती है। लेकिन वो वाली एप्रिसिएशन नहीं जो हम कई बार, तू मेरा राजा बेटा है ना, ये काम कर दे, बच्चे भी सीधा पूछते हैं क्या काम है, आज इतना मीठा मीठा बोला जा रहा है क्या काम है। रियल एप्रिसिएशन, रियल एप्रिसिएशन जो उनकी क्वालिटीज हैं, एक दूसरे की क्वालिटीज को बताना, ये नहीं कि पेरेंट्स ही बच्चों को बताएं, बच्चे भी पेरेंट्स को बताएं, बड़ों को बताएं, छोटी छोटी बातों में हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। हमारे पीछे हमारे बड़े हमारे घर को संभालते हैं, कई घरों में बड़े भी होंगे, बट हम सोचते करते ही क्या है, घर में बैठे रहते हैं, चलो दरवाजा खोल देते हैं। कितना बड़ा काम है आप सोच के देखो, आपको रोज घर लॉक करके जाना पड़े। कैन यू जस्ट गिव देम एप्रिसिएटिव वर्ड्स, हम कह सकते हैं आप हो तो हम कितने निश्चिंत हैं, बस इतना ही कह दो, कितनी ताकत आ जाएगी उनके अंदर। आप बैठे हो तो हमें कोई चिंता नहीं है, आप मेरा इतना काम कर देते हो ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, भले सारा आप ही कर रहे हो। लेकिन एक्चुअल में ये फैक्ट है कि अगर हम बाहर जा पा रहे हैं तो पीछे कोई घर में है जिसके कारण हम जा पा रहे हैं, तो क्या हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं? छोटी छोटी बातों में विशेषताओं को देखें। और एक बात और है, किसी को करेक्शन भी देनी है तो परमात्मा हमें बड़ी अच्छी विधि बताते हैं, कहते हैं एक्ट विद टैक्ट। ये हर संबंध में काम देता है, हर संबंध में। कैसे? एक्ट विद टैक्ट का मतलब क्या है? ACT, एक्ट। इसका फुल फॉर्म समझिएगा, ए फॉर एप्रिसिएशन। जिस भी व्यक्ति को आपको कुछ बताना है कि आपको ये करेक्ट करना है, तो पहले उसकी कोई अच्छी विशेषता बताइए। पता है आपके अंदर ये गुण है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे ये हेल्प मिलती है, या मुझे ये खुशी मिलती है, कुछ बोलिए उनके बारे में जो एक्चुअल में उसका कोई गुण है। सी फॉर करेक्शन, फिर करेक्शन बताइए कि बस थोड़ा सा ये और ठीक कर लो ना, फिर तो सोने पे सुहागा। और टी फॉर ट्रस्ट, उनको ट्रस्ट जताओ कि हम आप पर विश्वास करते हैं, आपके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करते हैं, उन्हें एडवाइस दे देते हैं और फिर कहते हैं अब पता नहीं करोगे तो तुम अपनी मर्जी का, हमारा थोड़ी सुनोगे, पहले ही आशीर्वाद दे दिया करोगे तो तुम अपनी मर्जी का, तो कैसे करने की ताकत मिलेगी। तो करेक्शन कोई देना है तो उसको सैंडविच करके दें, एप्रिसिएशन और ट्रस्ट। और दिल से ट्रस्ट करें, दिल से विश्वास करें। जब मैं पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूं तो वो पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं काम करेगी? मैं दुआओं की शक्ति दे रही हूं तो क्यों नहीं काम करेगी? चाहे वो मेरा कलीग हो, मेरा सबॉर्डिनेट हो, मेरे अंदर काम करने वाले हो, मेरे ऊपर काम करने वाले हो, मेरे बच्चे हो, घर के बड़े हो, कोई भी हो, आप इस विधि को यूज करके देखिए। डायनेमिक विधि है क्योंकि इसके अंदर सच्ची एप्रिसिएशन है और हमारी शुभ भावना है ना, तो वो जरूर एक्सेप्टेंस की एनर्जी है उसके अंदर, ताकत है दुआओं की, तो जरूर सामने वाले में परिवर्तन करने की शक्ति हम ला पाएंगे। तो ऐसे ही नहीं बस एडवाइस दे देना ये करो, लेकिन उनकी विशेषताओं को सामने रखते हुए उनको ताकत दे के शिक्षा देनी है, शक्ति देकर शिक्षा देनी है। शिक्षा देना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई दे सकता है, सिर्फ शिक्षक ही नहीं, कोई भी दे सकता है, लेकिन उसके साथ साथ शक्ति देना ये सही शिक्षक का काम है। और इसीलिए हम एक बचपन में गेम खेलते थे, स्पॉट द मिस्टेक्स, बड़ा मजा आता था। एक पिक्चर परफेक्ट होती थी, दूसरी में थोड़ी सी कमियां होती थी और हम ढूंढ ढूंढ के निकालते थे, है ना, इसके पर्दे में डॉट्स नहीं है, ये तरबूज थोड़ा डिफरेंट है, एक आम मिसिंग है, एक कान मिसिंग है, एक मूंछ एक तरफ से मिसिंग है, देखते थे ऐसे। लेकिन अभी परमात्मा हमको दूसरा गेम खेलने के लिए कहते हैं, राजयोग में परमात्मा हमें कहते हैं, डिफरेंसेस नहीं बट स्पॉट द वर्च्यूज, विशेषताओं को देखो, विशेषताओं को देखने की नजर लाओ। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये नजर राजयोग के अभ्यास से अपने आप आ जाती है, अपने आप आ जाती है, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर इतनी विशेषता, सारी दुनिया ने तो हमारे अंदर कमियां ढूंढी, लेकिन इस राजयोग के द्वारा हम जानते हैं हमारे अंदर कितनी विशेषताएं हैं। और जब खुद को देखने की नजर बदलती है, इसीलिए कहते हैं रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद वन सेल्फ, पहले खुद से मेरा रिश्ता हो, उस खुदा से मेरा रिश्ता हो, तो खुदा के बंदों से रिश्ता अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। तो इससे बहुत जरूरी है, वो हमारे अंदर विशेषता देखता है तो मैं भी तो उसकी रचनाओं में विशेषता देखूं, हो सकता है, पॉसिबल है। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे वो स्पॉट द डिफरेंस था ना, खोजनी पड़ती थी मिस्टेक, अभी खोजनी पड़ेगी विशेषता, क्योंकि आज हर इंसान गलतियों का पुतला बन चुका है, इसलिए ढूंढनी पड़ेगी। तो वो ढूंढने की नजर आपके पास होनी चाहिए, है वो नजर, ला सकते हैं, इतने अपने मन के मालिक हैं कि हम सिर्फ विशेषता को देखेंगे? बताइए, है मालिक अभी कुछ हाथ नहीं उठा रहे हैं, कुछ हाथ उठा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम फोर्स नहीं करेंगे। हम ऐसा करते हैं, आपका टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई बार खुद पे ही डाउट होता है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हम एक टेस्ट ले लेते हैं और उसके आधार से देखते हैं। तो ये छोटा सा टेस्ट है, इसमें आपको क्या करना है, सभी को ध्यान से स्क्रीन पर देखना है। यहाँ पे दो तरह के प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, वो व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, कुछ ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। और आपको क्या काउंट करना है, आपको ये काउंट करना है कि व्हाइट कपड़े पहने हुए बास्केटबॉल प्लेयर्स कितनी बार बॉल को पास करते हैं, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये स्पीड बहुत तेज होगी, तो हो सकता है 5-6 काउंट के बाद आपको लगे मेरा तो मिस हो गया, कोई बात नहीं, आपको मैक्सिमम काउंट करना है जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। बीच में छोड़ना नहीं है, अगर गड़बड़ भी हो जाए तो छोड़ना नहीं है, लास्ट तक। ये 15 सेकंड का टेस्ट है, 15 सेकंड आपको कॉन्सेंट्रेट करके काउंट करना है। रेडी है सभी? ओके, चलिए। How many passes did you count? 15. अच्छा अच्छा, मैं पूछती हूँ ऐसे, 15 से कम 14 कितनों के थे? अच्छा, 13, 12, 11, 10, 9 से कम भी है 8, ओके। चलिए अब 15 कितनों के थे? 16, 17, 18 वाले भी है, 19, ओके, ठीक है। तो 10 से लेके 19 तक का काउंट है, ओके। अच्छा, चेक कर लेते हैं कितने काउंट्स थे। ओके, तो 15 काउंट्स थे, तो तालियां बजा सकते हैं 15 के लिए। अब ये कहते हैं डिड यू सी द गोरिल्ला, गोरिल्ला तो कोई नहीं था, गोरिल्ला तो कोई था ही नहीं, आपने देखा? अच्छा, एक जने ने देखा, दो तीन ने देखा, अच्छा कुछ ने देखा हॉल में। अरे आप टीचर्स भी ना, कुछ भी बात पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो यस तो कर ही देते हैं, था ही नहीं तो कहां से आपने गोरिल्ला देख लिया? सर बताइए, नहीं था ना, नहीं था, था ही नहीं। अच्छा कुछ कह रहे हैं भाई, ये तो कंफ्यूजन हो गई, कुछ चुप बैठे हैं, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ कह रहे थे। ऐसा करते हैं दोबारा से रिप्ले कर लेते हैं, कंफ्यूजन को दूर करें, वापस पीछे लेके चलते हैं। चलिए वापस हमने स्टार्ट किया, अब देखिए। ये तो बहुत बड़ा गोरिल्ला था, मोटा ताजा, बड़ा लंबा चौड़ा, और एक्शन भी करके गया। हाँ, लेकिन हमको गोरिल्ला क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमारा फोकस कहाँ था? व्हाइट प्लेयर्स पे था, इसलिए ब्लैक कुछ चीज हमको नहीं दिखी ना। तो इसका मतलब आप अगर अपने मन को ऑर्डर दें कि मुझे वर्च्यूज ही देखने हैं, विशेषताएं ही देखनी हैं, तो बड़ी से बड़ी कोई भी नेगेटिविटी आ जाए तो वो मेरी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं कर सकती। और अगर दिख भी गया गोरिल्ला, इसका मतलब ये नहीं आपकी अटेंशन पुअर है, दिख भी गया लेकिन आपने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं कि हमें प्रॉब्लम्स या बुराइयां कमजोरियां दिखेंगी नहीं या हमें उनको एक्नॉलेज नहीं करना, लेकिन उसमें फंस नहीं जाना है। करना क्या है, क्वालिटीज को देखना है, सॉल्यूशंस को देखना है, प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। इसीलिए जो मैंने शुरू में बात कही थी, प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इग्नोरेंस एंड सॉल्यूशन इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन विजडम। सो ऑन दिस गणेश चतुर्थी, लेट बी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सॉल्यूशन बाय इम्बाइबिंग द स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमें सिखाती है वो चश्मा पहनना जिससे हमें विशेषताओं को ही देखना है, क्योंकि उसी से हम दूसरे को विशेष बना सकते हैं, उसमें क्वालिटीज डाल सकते हैं। और अगर कुछ विशेषताएं देखते हुए भी कुछ बात हो जाए तो परमात्मा हमें एक और सिद्धांत सिखाते हैं, जरूर पीछे का कोई हिसाब किताब है, अकाउंट क्लियर। मन में मत रखो उस बात को, फॉरगिव एंड फॉरगेट। कई कहते हैं पुरानी बातें भूली नहीं जाती, इसलिए हमारे रिश्ते की कड़वाहट जब मैं उनको देखता हूं मुझे वापस वही सब कुछ याद आ जाता है। होता है नहीं होता, किसी किसी के लिए तो हम कहते हैं उसने मेरे दिल को इतना दुखाया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। उसने तो एक बार आपके दिल को दुखाया, लेकिन उसने जो आपके दिल में कांटा दिया, कहते हैं ना उसकी बात चुभ गई, लेकिन उस कांटे को पकड़ के इतने सालों से किसने रखा हुआ है और उस जख्म को किसने गहरा बनाया है। तो उसने दुख एक बार दिया था, लेकिन मैंने अपने आप को कितना दुख दिया, कौन है रिस्पॉन्सिबल? पहले तो खुद को माफ कीजिए। और इस स्पिरिचुअल सिद्धांत को समझिए कि पीछे कुछ हुआ है तब आज हुआ है। आज आपको एक छोटी सी कहानी के साथ बस इसको हम पॉज करते हैं। फिर हमारी एक सीनियर सिस्टर ने इसका अपना अनुभव सुनाया था, वो बात मुझे जब याद आती है तो मुझे इतनी क्लैरिटी आ जाती है उस दिन से कि जो भी हमारे साथ होता है उसका क्या मतलब है। उन्होंने बताया कि वो किसी प्रोग्राम करने गई थी कहीं पर, और वहां पर प्रोग्राम में मतलब कुछ स्टार्ट करने में टाइम था, तो जो जिन्होंने बुलाया था उन्होंने कहा दीदी आप हमारे ड्राइंग रूम में बैठिए। ड्राइंग रूम में टेलीविजन चल रहा था, घर के बच्चे टीवी देख रहे थे और टीवी में कोई सीरियल चल रहा था उसका, उसमें उन्होंने देखा, दीदी भी देखने लगी भी बच्चे क्या देख रहे हैं, और उसमें उन्होंने देखा कि वो जो एक व्यक्ति था मेन हीरो था उसको गलत इल्जाम में फंसा दिया, फिर पुलिस ले गई, और ये बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। बच्चे कह रहे बिल्कुल सही हो रहा है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो दीदी को कुछ समझ में नहीं आया, दीदी ने कहा भाई देखो उस बेचारे के साथ बिना किसी इल्जाम के उसको ले गए, बुरा हो रहा है और आप लोग खुश क्यों हो रहे हो? तो बच्चों ने कहा दीदी आपको पता नहीं है इस इंसान ने क्या क्या किया, आपने पीछे के एपिसोड नहीं देखे ना, आज आखिरी एपिसोड आ रहा है इस सीरियल का और जो दिखा रहे हैं बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। तो ये क्लैरिटी आती है हमें कि हमें पीछे के एपिसोड्स मतलब पिछले कई जन्मों में हमने क्या 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 किया है, किसके साथ किया है। आज हम जिनसे मिल रहे हैं वो पहली बार नहीं मिल रहे हैं, किसी के साथ अच्छा किया है तो किसी के साथ बुरा भी किया है। इस सिद्धांत को समझकर जब हम ये बात समझते हैं कि जरूर मेरा कुछ किया है, तो दिल से हम क्षमा मांग लेते हैं कि अगर इतने जन्म पहले मैंने कुछ किया भी है तो आज मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। जरूरी नहीं आप उनको आप जाकर बोलें, लेकिन भगवान को साक्षी मानकर अपने दिल से उस बात को निकाल दीजिए कि जरूर मैंने कुछ किया था तो मेरे सामने आया है। आप क्लियर हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, आपका कांटा निकल जाएगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा उसका रिस्पॉन्सिबल भी कौन है, वो नहीं है मैं हूं। तो ये बहुत डीप चीज है, एकदम से ऐसा नहीं कि आज आपने सुना और आप कहेंगे नहीं ये तो अदिति बहन बहुत मुश्किल है फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेकिन फॉरगिव जब तक नहीं कहेंगे फॉरगेट नहीं कर सकते। और माफ करने की शक्ति वो भी कब आती है, जब हमारा एक दूसरे से आत्मिक प्यार बढ़ता है, जब हम इस राजयोग को निरंतर अभ्यास करते हैं, इसके लॉस को समझते हैं, जीवन के रिश्तों के लॉस को समझते हैं और उसको धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके स्वरूप में आता चला जाता है। तो मैं खुद अपने आप में देखा कि मैं कितना नेगेटिव सोचती थी खुद के बारे में, लेकिन खुद से कितना सुंदर संबंध बना, उस परमात्मा से ऐसा संबंध बना कि आज उनकी शक्ति से मैं कहूंगी, उनकी छत्र छाया में अपने आप को इतना सेफ महसूस करती हूँ कि दिल्ली शहर में मैं पहले अकेली रात को कभी नहीं निकल पाती थी, आज 75 से ऊपर सिटीज में मैं अकेले ट्रैवल कर चुकी हूँ सेशंस लेने के लिए, प्रोग्राम्स लेने के लिए, और एक बार भी मेरे मन में नेगेटिव थॉट नहीं आता कि कुछ मेरे साथ गलत होगा, आता ही नहीं, क्योंकि सदा सर्वशक्तिमान भगवान की छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित हूँ। तो जब ये हमारे अंदर पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है, खुद के साथ और परमात्मा के साथ रिश्ता बनता है, तो परमात्मा के बंदों के साथ भी हमारा रिश्ता बहुत बहुत स्वीट बन जाता है, मधुर बन जाता है, और धीरे धीरे अपने परिवर्तन से सामने वाले में भी परिवर्तन आने लगता है। सो अलाउ पॉजिटिव इनपुट्स, एप्रिशिएट, एक्सेप्ट देयर रोल्स एंड संस्कार, अटेंशन अपने ऊपर रखें, अपने विचारों पर, हमेशा वर्च्यूज को देखना है, अकाउंट क्लियर, एंड दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता घर छोड़ना नहीं है, कोई बाहर जाना नहीं है, है ना, किसी को कोई चीज अपना प्रोफेशन घर बार नहीं छोड़ना है, लेकिन आध्यात्मिकता यही है, इसको समझना और अपने जीवन में इम्बाइब करना और अपने रिश्तों को और बेटर करना। मैं जब इस स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं सीखने के लिए आने लगी, तो मैंने अपनी मदर इन लोग को कहा कि मुझे मेडिटेशन सीखना है और मैं ब्रह्मा कुमारीज में जाऊंगी। मैंने ब्रह्मा कुमारीज का नाम उससे पहले कभी नहीं सुना था, तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि सुना है, उनके पास जो जाता है ना वो उसके ऊपर जादू टोना कर देती है अपनी आंखों से, और फिर वो वहीं उन्हीं का हो जाता है। और हम बड़ों का कहना मानते थे और हमने भी सोचा कि अच्छा ऐसा होता है, मैंने कहा लेकिन मम्मी मुझे मेडिटेशन जरूर सीखना है, और मुझे जिस व्यक्ति ने बताया उसके अंदर इतना पॉजिटिव चेंज है ना, मैं उनकी आंखों की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगी। और आपको यकीन मानिएगा, मैं अपने हस्बैंड के साथ इसलिए गई, मैंने कहा पता नहीं क्या जादू टोना कर दे, लेकिन मुझे तो अपना कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करना है। और हम दोनों गए, 3 दिन तक मैंने आंखें ऊपर करके नहीं देखा कि पता नहीं कुछ ये आंखों से जादू कर दें तो। लेकिन आप यकीन मानिए, उन 3 दिनों में मेरे खुद की इतनी आंखें खुल गई, इतने कंफ्यूजन दूर हुए कि समझ में आया कि क्यों कहते हैं वो जादू कोई जादू ऐसा नहीं है, लेकिन वो जादू आपके जीवन को श्रेष्ठ परिवर्तन की तरफ ले जाने वाला है। आपकी सोच जो सालों से नहीं बदली होगी, वो पॉजिटिव अपने आप सोचने लग जाएंगे, तो ये जादू से कम तो नहीं है ना। और ऐसा जादू लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तो आप सब तैयार हैं ये जादू लगाने के लिए? आज मेरी मदर इन लॉ ही कहती हैं सबके बीच में, वही कहती है मेरी जैसी बहू नहीं हो सकती जो सब चीजों को इतने बैलेंस से, चाहे घर है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, रिश्ते हैं या प्रोफेशन है, हर चीज को और अपना स्पिरिचुअलिटी का भी करती है, बड़े बैलेंस रूप से चलती है। और इसका क्रेडिट इस राजयोग मेडिटेशन को जाता है, मुझको नहीं। मैं तो बहुत ही कमजोर थी, लेकिन उस कमजोर में ताकत उस ईश्वर ने भरी। तो सभी अपने अपने स्थानों पे जाकर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने सेंटर्स पे जाके आप थोड़ा अपने लिए समय जरूर निकालिए। आप यकीन मानिएगा, आपका बहुत सारा समय बचेगा। मुझे ऐसा लगता था मरने की भी फुर्सत नहीं है, इन 2 बच्चों के साथ मैं और कुछ नहीं कर सकती। सीखने के बाद मेरा प्रोफेशन चालू हुआ, मैंने किताबें लिखी, सेशंस चालू करे, स्किल्स डेवलप करी। तो राजयोग कोई हमें संन्यास नहीं दिलाता है, हमारी बुराइयों से संन्यास दिलाता है, जिससे हम अपनी उन पावर्स को अच्छे कार्य में लगाकर खुद की उन्नति करें, समाज की उन्नति करें और सबके लिए एग्जाम्पल बने। थैंक यू। ओम शांति। सो 2 मिनट हम मेडिटेशन करके इस सेशन को पूरा करेंगे। ओम शांति। अपना ध्यान सब बातों से हटाकर मस्तक के बीच में चमकते हुए सितारे की ओर लेकर जाएं। सबसे पहला और सुंदर रिश्ता मुझ आत्मा का इस शरीर के साथ। ये शरीर एक साधन है और मैं आत्मा इसको यूज करने वाली मालिक हूं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, भाग्यशाली आत्मा हूं,
मेरे भाग्य का सितारा, मैं चमकता हुआ महसूस कर रही हूं। मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो मैंने अपने आप को मौका दिया, अपने को जानने के लिए समय निकाला और माउंट आबू के इस परिसर में, इस कॉन्फ्रेंस में मैं आई। वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मेरे संबंध जिस गहराई से मैंने खुद को जाना, अपने क्रिएटर परमात्मा को जाना, उस आधार से अपना एक सुंदर संबंध, वो सर्वशक्तिवान मेरा पिता है, मेरा पालनहार है, मेरा सुप्रीम टीचर है, जो मुझे हर पग पर सिखा रहा है मुझे कैसे सोचना है, मुझे खुद को और औरों को कैसे देखना है। हर पल मुझे सशक्त कर रहा है। उसकी छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित हूं। वो सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और इसी आधार से मैं अपने आसपास हर संबंध में हर एक को एक विशेष आत्मा के रूप में देखती हूं। हर एक परमात्मा की रचना है, श्रेष्ठ है, स्पेशल है, यूनिक है, और इस नजर से देखने से मैं उनकी विशेषताओं को इमर्ज करने में उनकी मदद करती हूं। समाज को एक बेहतर समाज बनाने में अपना सहयोग देती हूं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे संबंध सबके साथ बहुत प्यारे संबंध हैं, क्योंकि हर एक की विशेषता को देखना मेरी विशेषता है। उस परमात्मा का करोड़ों धन्यवाद जिसने मुझे मौका दिया, मुझे ये समझ दी, और आज इस शुभ दिन पर मैं इन ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में धारण कर श्री गणेश चतुर्थी पर अपने लिए एक नए जीवन का शुभ आरंभ करती हूँ। थैंक यू गॉड, आपका दिल से शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। अदिति बहन ने विशेष मेडिटेशन के द्वारा संबंधों के अंदर जो समस्या आती है उसका सरल और सहज रीति से, स्नेह से हम कैसे समाधान कर सके उसकी हमें विधि बताई, तो अदिति दीदी का हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अदा करते हैं।